चैप्टर 97। अब आगे। इस आवाज़ को सुनते ही अर्जुन के हाथ जहाँ थे वहीं रुक जाते हैं और वे तुरंत रूही का चेहरा छोड़ देता है और उसके चेहरे पर डर नज़र आने लगता है। रुद्र गुस्से में डाइनिंग टेबल के पास आ अर्जुन को देख अपनी सर्द आवाज़ में बोला, तुम्हारी आंखें कुछ ज़्यादा ही इधर उधर देख रही है, कहीं ऐसा ना हो कि कुछ और देखने के लिए तुम्हारी आंखें ही ना बचे। लगता है कि तुम बहुत ज़्यादा फ्री घूम रहे हो, तभी तो तुम्हारी नज़र दूसरों पर ज़्यादा ही जा रही है। इसीलिए आज चुपचाप ऑफिस आ जाना, मैं तुम्हें काम बताता हूँ जिसके तुम्हारा ध्यान फालतू की बातों पर ना जाए। रुद्र की बात सुनकर अर्जुन अपना थूक निगलते हुए बोला, भाई सॉरी, आगे से कुछ भी नहीं बोलूंगा, ना ही कुछ देखूंगा। अगर गलती से देख भी लिया तो उसे इग्नोर कर दूंगा, पर इस बार माफ़ कर दो भाई, मुझे कॉलेज का प्रोजेक्ट भी बनाना है। अर्जुन की बात सुनकर परी अपना मुंह दबाकर हंसते हुए अपने मन में बोली, अच्छा हुआ इसके साथ ये इसी लायक है। वहीं अर्जुन की फालतू की बातों को सुनकर रुद्र कुछ भी नहीं बोलता और रूही का हाथ पकड़ उसे अपने साथ ले जाने लगता है, जिसे देख रूही अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोली, आप कहाँ ले जा रहे हो मुझे, छोड़िए मेरा हाथ, मुझे कॉलेज भी जाना है। रूही के बोलने पर रुद्र उसके कुछ नहीं कहता और उसका हाथ पकड़ उसे बाहर लेकर चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ इंदौर में देवांश दिशा को ले होटल पहुंचता है और रिसेप्शन में जाकर उन्हें दो रूम बुक करने को बोलता है। रिसेप्शन में बैठी लड़की कुछ चेक करती है, उसके बाद देवांश और दिशा को देख बोली, सर मैम आई एम सॉरी, लेकिन आज इस होटल में सारे रूम बुक हो गए हैं, केवल एक VIP रूम ही बचा हुआ है, आप दोनों प्लीज एक ही रूम में एडजस्ट कर लीजिए। रिसेप्शनिस्ट की बात सुनकर दिशा बोली, ये आप कैसी बात कर रही हैं, प्लीज़ आप एक और रूम का इंतज़ाम कीजिए, हम दोनों एक रूम में कैसे रह सकते हैं, वैसे भी मैंने पहले ही दो रूम में बुकिंग के लिए बोला था, तो आप इस तरह हमें रूम देने से कैसे मना कर सकती हैं। दिशा की बात सुनकर रिसेप्शनिस्ट बोली, जी मैम आपने बुक किया था लेकिन आपकी बुकिंग उस वक्त कैंसिल हो गई थी, हमने आपको मैसेज भी किया था लेकिन शायद आपने ध्यान नहीं दिया, और इस टाइम हमारे पास एक ही रूम है, अगर आप ये भी नहीं लेती तो ये भी बुकिंग फुल हो जाएगी, उसके बाद आपको ये रूम भी नहीं मिलेगा। रिसेप्शनिस्ट की बात सुनकर देवांश बोला, ठीक है आप हमें जो रूम खाली है वही दे दीजिए। रिसेप्शनिस्ट देवांश की बात सुनकर हाँ में सर हिला देती है और देवांश को रूम नंबर बता उसे रूम का कार्ड दे देती है। वहीं दिशा देवांश को कार्ड लेता देख गुस्सा हो जाती है, क्योंकि वे देवांश के साथ एक रूम में बिल्कुल भी नहीं रह सकती थी। वहीं दिशा को गुस्से में देख देवांश बोला, मिस दिशा आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको सब समझाता हूँ। देवांश की बात सुनकर दिशा ना चाहते हुए भी देवांश के साथ चली जाती है। कुछ देर बाद देवांश दिशा को लेकर VIP रूम के अंदर आता है और दिशा को सोफे पर बैठाते हुए खुद उसके बगल वाले सोफे पर बैठते हुए बोला, मिस दिशा मुझे मालूम है किसी के साथ भी एक कमरे में रहना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो जाएगा, पर आपको मालूम है ना हम यहाँ ज़्यादा दिन नहीं रुक रहे हैं, हमें यहाँ बस अपनी मीटिंग करके निकलना ही है, वैसे भी अब सारे रूम बुक हो गए हैं तो हम क्या ही कर सकते हैं, अगर हम ये रूम भी नहीं लेते तो ये भी हमारे हाथ से चला जाता। वैसे भी मिस दिशा आप इतने दिनों से मेरे साथ काम कर रही हैं, आपको मेरे साथ अनकंफर्टेबल फील हुआ, क्या आपको ऐसा लगता है कि आप मेरे साथ एक कमरे में रहेंगी तो मैं आपके साथ कुछ गलत करने की कोशिश करूँगा। देवांश की बात सुनकर दिशा अब कुछ बोल नहीं पाती, क्योंकि अब वे कैसे देवांश को बताए कि भले ही उसे देवांश के ऊपर विश्वास हो पर फिर भी एक साथ किसी गैर मर्द के साथ एक ही कमरे में रहना ठीक नहीं है, पर सिचुएशन को समझते हुए दिशा बोली, नहीं सर ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है मैं एक ही कमरे में एडजस्ट कर लूंगी। दिशा की बात सुनकर देवांश भी मुस्कुराते हुए कहता है, ठीक है मिस दिशा आप थक गई होंगी, एक काम कीजिए पहले आप फ्रेश हो जाइए फिर हम लंच करते हैं। देवांश की बात सुनकर दिशा अपना सर हाँ में हिला देती है और अपने कपड़े ले बाथरूम में चली जाती है। वहीं दिशा को जाते देख देवांश एक डेविल स्माइल करते हुए बोला, गुड गर्ल आई एम सॉरी कि मुझे तुम्हें इस तरह परेशान करना पड़ा, पर तुम जब तक मेरे पास मेरे करीब नहीं रहोगी तब तक गुड गर्ल तुम मुझसे प्यार कैसे करोगी, मैं पूरी कोशिश करूंगा गुड गर्ल कि तुम्हें इन दिनों अपने प्यार का एहसास करवा सकूं, जिसके तुम खुद मेरे पास खुशी खुशी आ जाओ। इतना बोल भी वही सोफे पर बैठ अपना लैपटॉप निकाल काम करने लगता है और दिशा के बाहर आने का इंतजार करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ रुद्र की कार में इस समय रूही रुद्र के गोद में बिल्कुल शांत बैठी हुई थी और कार में पार्टीशन ऑन था, ड्राइवर भी चुपचाप कार रूही के कॉलेज की ओर ड्राइव कर रहा था। रुद्र ने जबरदस्ती रूही को अपनी गोद में बैठाकर रखा हुआ था पर अभी तक कुछ बोला नहीं था, बस अपनी घूरती हुई नजरों से रूही के चेहरे को देख रहा था। वहीं रूही जो रुद्र को गुस्से में देख अभी तक चुपचाप बैठी हुई थी, जब उसके और बर्दाश्त नहीं हुआ तो वे रुद्र को देखते हुए बोली, आप प्लीज मुझे छोड़िए मुझे आपकी गोद में नहीं बैठना। इतना बोल रूही रुद्र का हाथ अपनी कमर से हटाने लगती है। वहीं रूही की बात सुनकर रुद्र जो अब तक खुद को कंट्रोल करके बैठा हुआ था वे गुस्से में बोला, रू तुम्हें मेरे गोद में नहीं बैठना तो किसकी गोद में बैठना, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अर्जुन को अपने चेहरे को छूने देने की। रुद्र की बात सुनकर रूही को अब समझ में आता है कि ये साइको इंसान इतना ज्यादा पागल क्यों हुआ बैठा है। इतने दिनों में वे ये बात अच्छे से जान गई थी कि ये इंसान उसे लेकर कुछ ज्यादा ही ऑब्सेस्ड है, पर ये बात वे शैतान के मुंह पर तो नहीं बोल सकती थी और ना ही वे उसके ये कह सकती थी कि अर्जुन सिर्फ एक दोस्त के नजरिए से उसके चेहरे को छू रहा था, क्योंकि वे अगर ऐसा कहती तो भी इस शैतान का शैतानी रूप जाग जाता। इसीलिए वे अपने चेहरे पर मासूमियत लिए रुद्र से अपनी प्यारी आवाज में बोली, मैंने उसे नहीं छूने दिया, वे उसने ही मेरे चेहरे को पकड़ा, मैं तो उसके दूर ही रहती हूँ। रूही की बात को सुनकर रुद्र को थोड़ा अच्छा लगा कि उसकी रूह की गलती नहीं है, लेकिन फिर वे गुस्सा होते हुए बोला, ठीक है रूह, लेकिन अगली बार से तुम सबसे दूर रहना, अगली बार से तुमसे ये गलती भी नहीं होनी चाहिए। इतना बोल वे रूही के पूरे चेहरे पर किस करने लगता है, जिसे देख रूही रुद्र को रोकते हुए बोली, छोड़ो मुझे, तुम मुझे बार बार किस क्यों करते रहते हो, मुझे ये बिल्कुल भी नहीं पसंद।
रूही का इतना बोलना ही था कि रुद्र की आंखों में फिर से गुस्सा उतर आता है।